बलिदानम्। जय जय श्री राधे श्याम, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पीरावन चारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरी जय राधा माधव कुंज बिहारी, युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मवदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्, ओमज्ञानतिनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहनरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी वैष्णवों का रविवार के इस प्रीतिभोज सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य महाजनों ने बताया है भगवान के विषय में सुनना श्रवणम। महाराज परीक्षित इस विश्व के इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर विराजे हैं और व्यास नंदन कवि कुल चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज उस महासभा के महाआसन पर भगवत कथा के सर्वज्ञ मर्मज्ञ विद्वान सुखदेव भगवान के इस दिव्य अमृतमय अवतार लीला कथा को सुना रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं मन से उसी गंगा तट पर जहाँ भागवत हो रहा है। भागवत भगवान का शब्द अवतार है। अगर आप अपने जीवन को भक्तिमय रसमय ज्ञानमय आनंदमय बनाना चाहते हैं तो संतों ने बताया है नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि ये भागवत प्रेम शास्त्र है। कई लोगों का कहना है कि भागवत का श्रवण और कीर्तन मनुष्य को तीनों गुणों से ऊपर उठा देता है, क्योंकि भगवान का वांग्मय वपु है। भगवान शिव, सनकादिक मुनि, नारद जी जैसे महापुरुष बस इसी कथामृत में मस्त रहते हैं। आप सभी को पता है समुद्र मंथन में विष निकला तो शिव जी ने पिया, लेकिन अमृत निकला तो शिव जी गए नहीं, जबकि पहला अधिकार उनका होना चाहिए। अगर वो भी न पीते तो ये सब तो राधे राधे ही हो गए, है ना। उनकी उनकी जो बाष्प है उस ज्वाला को भी वो सहन नहीं कर पा रहे थे ये देव धनुज सब दानव। क्यों नहीं गए? क्योंकि शिव जी के पास हरि कथा अमृत है, हरि नामामृत है, और ये अमृत जिसके पास वो तो साधारण अमृत है स्वर्ग वाला, क्योंकि वो पीकर भी वो देवता लोग मरते रहते हैं। लेकिन ये गीता का ज्ञान, भागवत की कथा वास्तविक अमृत है, क्योंकि इसको पीने से यदगत्वा न निवर्तन्ते। भगवान ने इस गीता ज्ञानामृत के लिए गारंटी दिया है, नमे भक्त प्रणश्यत। उस अमृत वालों के लिए ये गारंटी नहीं है कि वो पिएगा वो यदगत्वा, वो तो पुनरपि, उसके लिए कहा है क्षीणे पुण्य, लेकिन इसे कहा तो इसीलिए वैष्णव का प्राण धन है भागवत। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णवानाम धनम। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी ने इसको अमल पुराण कहा है, परम प्रमाण माना है। अब देखिए विश्व इतिहास के जितने भी वेदज्ञ हुए हैं, शास्त्र के सार को समझने वाले, सब ने भागवत को शिरोधार्य किया है, सभी ग्रंथों का राजा कहा है। गीता को भी राज विद्या कहा है भगवान ने, तो प्रभुपाद जी ने सब राजा ही दिया है, नीचे वाला आइटम दिया ही नहीं। भगवत गीता, राज विद्या, भागवतम किंग ऑफ नॉलेज, सब हायर वस्तु दी है। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस भागवत के द्वारा भागवत को समझे, मतलब भक्त भागवत को समझे, क्योंकि हमें भी भक्त बनना है। तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत सनातन संबंध है, नित्य संबंध है, तोड़े से भी टूटने वाला नहीं ऐसा संबंध। तकलीफ क्या है? भूले हुए हैं। संबंध तो शाश्वत हमारा उनसे है, लेकिन इस संबंध को हम विस्मृत हो चुके हैं, इसीलिए वैष्णव संत हमें उस संबंध को याद कराते हैं। और हमारा जो स्वरूप कार्य है उसकी सेवा वो हमें प्रदान करते हैं, कृष्ण की सेवा। और इससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती है और हम हमारे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, आप सभी बड़े सौभाग्यवान हैं कि रविवार को इतनी गर्मी में बिना पंखे के नीचे बैठे हो, लेकिन ये कृष्ण कथा कान से जाने वाला वो अमृत है कि वो अंदर ठंडक देगा। आप लोग अब तक क्या कर रहे थे? बाहर एसी में रहते होंगे अपने घर पर पंखे, लेकिन शरीर ठंडा होता होगा। जो हमारा मन है वो तो काम की ज्वाला में जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, वो ये पंखा दूर नहीं कर सकता और ना तो वो एसी दूर कर सकता है, है ना। ये जो हरि कथा अमृत है वो हृदय के अंदर जाकर हमारे कामाग्नि क्रोधाग्नि उसके ऊपर अमृत वर्षा करता है। इसलिए संतों ने कहा है कि अमृत से भी श्रेष्ठ, चंद्रमा से भी शीतल, हाँ मिश्री से भी मधु अगर कोई वस्तु है तो है हरि कथा, क्योंकि भगवान रसमय है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। भागवत में व्यास जी ने लिखा है, कथा समानो भुवनास्ति किंचित। 14 भुवन में कृष्ण कथा के समान कोई वस्तु नहीं है। कथा समानो भुवनास्ति किंचित, कुछ भी नहीं। अब हिंदी में समझ सकते हो इस सेंटेंस को, हम त्रिभुवन में अभी समान नहीं है तो श्रेष्ठ की तो बात ही छोड़ दीजिए, समान भी कुछ नहीं है। इसीलिए हमें गिरधारी के चरणों में, जगन्नाथ के चरणों में यही मांगना है कि आपकी कथा अमृत देने वाले वैष्णवों का संग दीजिए, यही मांगा है ध्रुव महाराज ने। भगवान उनके समक्ष खड़े थे ध्रुव जी के, और भगवान से भगवान का धाम या भगवान का सानिध्य न मांगकर ध्रुव जी मांगते हैं कि मुझे आपके भक्तों के संग में कथा होती है वह दीजिए। ध्रुव जी का ये अपनी स्तुति में बड़ा सुंदर भाव है। तो प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से हमें ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु आसानी से मिल रहा है, सुलभ हो गया है। इसीलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको बड़े श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक प्रेम से सुने। क्या है ये बाहर है? प्रेम करेगा गाना गाएगा, नकली प्रेम है, लेकिन गाना जीव का स्वभाव है। अब क्या गाना है उसको पता नहीं है, क्या खाना है उसको पता नहीं है, लेकिन खाना गाना ये सब कर्म है उनके। अब कैसे हो, सहन करोगे इसको? मैं बोल रहा हूँ वो गा रहा, क्या अंदर जाएगा आप लोग, वो कि ये कि दोनों? अच्छा दो कान, एक कान से उसको एक, ठीक है। आप लोग हंस बनिए, हंस, हंस को दूध और पानी दिया जाता है ना, तो वो दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे भी हम लोग को आदत है, जैसे कई काम होते लेकिन नोट गिनते हो तो हमारा ध्यान कहीं जाता है नहीं, इसमें भी कुछ ना करना पड़े, हमारे पास वो है, बुद्धि है, उसको हम इस्तेमाल करना चाहिए बस, कि सब कुछ होते हुए भी हमारा ध्यान किसी की ओर नहीं जाता। हमारे पैसे दूसरे के पैसे की ओर भी हमारा ध्यान जाता है, हमारे के वहां जहां नजर जहां मन हो तो ये है, अगर चाहे तो। ऐसे ही मना कृष्ण निवेश, मन को कृष्ण कथा में लगाने का प्रयास करना, और भगवान कृपा करेंगे अंदर से, तो परमात्मा रूप में कृपा करने ही बैठे हैं। तो आइए हम उस सुखदेव जी के और परीक्षित के बीच में हो रहे उस दिव्य संवाद, भगवत कथा अमृत का समुद्र है सिंधु, उसमें से एकाध बिंदु स्वरूप एक श्लोक का आस्वादन करते हैं। शुक मुख से निकला है, अमृत के समान ये औषधि है। आप वैष्णव के चरणों में निवेदन है, गाना भी बंद हो गया है, तो आप लोग गाइए अभी हमारे पीछे। मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्त्रिय सत्पति यथा। दुर्वासा जी उस सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए तीनों लोकों में न कैलाश में स्थान मिला, न ब्रह्मलोक सत्यलोक में, न ब्रह्मा जी ने आश्रय दिया, न शिव जी ने, तो सबसे भागते भागते वैकुंठ गए, और वैकुंठ में भगवान विष्णु से निवेदन किया, तो उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने यह श्लोक बोला है। आप जो भी बोल रहे हो, सुन रहे हो, ये शब्द सुखदेव के ही नहीं, मूल रूप में विष्णु मुखारविंद की वाणी। कितने पवित्र है आप समझ सकते हो, भगवान विष्णु के चरणों के जल से, जिसको आप गंगा कहते हो, जो त्रिभुवन के पाप ताप धो देती है, तो ये श्लोक गंगा कहां से निकली है? मुख से निकला है, वो तो चरण जल है, ये मुखारविंद का अमृत है ये श्लोक। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से अपना स्वभाव बताते हैं। हमें भगवान से प्रेम करना है, और जिससे हमें संबंध जोड़ना है, जिससे प्रेम करना है, उसका स्वभाव हमें जानना चाहिए, नहीं तो फिर मार खा जाएंगे। आजकल दुनिया वाले सब रिलेशन करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, तो रूप देख लेते, धन देख ले, स्वभाव नहीं देखते, तो गड़बड़ होता है। स्वभाव अच्छा होएगा ना तो काम में है, और स्वभाव क्रोधी आ गया तो हर रोज ताड़का, वो बेचारा सुख के लिए चक्कर लगाया था चार, फिर जीवन भर चक्कर काट रहा है, तो ऐसा होता है ना। तो जिससे आप प्रेम करना चाहते हो, जिससे आप संबंध बनाना चाहते हो, आपका कर्तव्य है ना कि उनके स्वभाव को समझे, उनके स्वरूप। तो भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान का क्या स्वरूप है, वो स्वयं श्रीमुख से बताते हैं, और भगवान को दर्शन किए हुए, अनुभव साक्षात्कार किए हुए सुखदेव जी बता रहे हैं भगवान के स्वभाव को। और एक बार आवृत्ति करिए, मई निबद्ध हृदया साधव समदर्शना वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्प्रिय सत्पति यथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। भगवान विष्णु ने कहा, जिस तरह सती स्त्रिया अपने सदाचारी पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त हुए शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूं मैं। इस श्लोक में समदर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त सबके प्रति संभाव रहता है। भगवद गीता 18:54, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समसर्वेश भूतेषु मद्भक्ति। शुद्ध भक्त होने पर ही विश्व बंधुत्व संभव है। पंडित समदर्शिन, शुद्ध भक्त विद्वान होता है क्योंकि वह अपने स्वाभाविक स्थिति को जानता है, भगवान की स्थिति को भी जानता है और जीव और भगवान के परस्पर संबंध को जानता है। इस तरह पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान रहता है और वह मुक्त हो जाता है। इस तरह हर वस्तु आध्यात्मिक स्तर पर देखता है। वह सारे जीवों के सुख दुख का पूर्वानुमान कर सकता है। वह समझता है कि उसके लिए सुख है वही दूसरों के लिए भी सुख है, जो उसके लिए दुख है वो दूसरों के लिए भी दुख है। इस तरह हरेक के प्रति वो करुणावान होता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, सोचे तथो विमुख चेत इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहोतुवान। विद्मुधान लोगों को सांसारिक दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे भगवान से अनुरक्त नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है कि वह अज्ञानी जनता को कृष्ण भावनामृत का बोध कराए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो सच्चिदानंद विग्रह है, वैकुंठ में शिवांश शिव के अंश दुर्वासा जो अत्रि से जन्म लिए थे, जो महायोगी के रूप में महातपस्वी और अति क्रोधी के रूप में विख्यात है, दुर्वासा जैसे ऋषि के विषय में भागवत में भगवान टाइटल है, भगवान विशेषण आया है, साप देने में वरदान देने में समर्थ है इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। लेकिन ऐसे प्रभावी प्रतापी महाराज अम्बरीश जो एक साधु राजर्षि थे, राजा प्लस ऋषि के गुण धारण किए हुए थे, ऐसे सरल भक्त के प्रति किए हुए कुछ अपराध के कारण तीनों लोकों में चक्कर काट रहे, घूम रहे हैं और सुदर्शन चक्र उसके पीछे लगा है विष्णु का जो अमोघ है। ऐसा हमने संतों से सुना है कि सूर्य में जो तेज है वो सुदर्शन चक्र के 100वां हिस्सा है। अब सूर्य में कितना तेज है, अक्षेश तेज, लेकिन सुदर्शन में जो तेज है अगर वो अपने प्रकट करे अपने, तो सूर्य में तो उसका 100वां पाए, उसे 100 गुना चक्र में, तो कितना जलाता होगा आप समझ सकते हो। अभी इतना दूर है सूर्य, हम लोग जल रहे हैं शरीर, तो दुर्वासा जी की क्या दशा होगी ये अनुमान कुछ किया जा सकता है। और वे दुर्वासा के प्रति भगवान विष्णु कहते हैं कि सारी दुनिया हमको स्वतंत्र कहती है, हमारे लाखों करोड़ों नाम है, इसमें एक नाम है अजीत। भगवान का क्या एक नाम है, मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि जो कृष्ण की कथा कीर्तन को सुनता है, उनकी सेवा में समर्पित होता है, तो वे अजीत को भी वो भगत जीत लेता है। ऐसे है अजीत, लेकिन ऐसे अजीत मतलब जिसको कोई न जीत सके, लेकिन भक्त तो उसको जीत लेते हैं। अब जीत क्या लेते हैं, बांध देते हैं। यशोदा जी ने तो बांध भी दिया भगवान को अभी, और भगवान बंधे हैं, रो रहे हैं, और सारे भगत उनकी आरती कर रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे। ये भी एक समझने वाली बात। यहाँ रोते रहो महाराज, सबको रो रहे, थोड़ा रो के देखो तुम भी, और तुम रोए हुए गोविंद तुम्हारी जय हो दामोदर जी, लेकिन खोलना नहीं है तुमको, रोते हुए तुम्हारी पूजा करना है। तुम कभी कभी रोते हो, कभी कभी बंधन में आते हो, किसी किसी के द्वारा ही, इसलिए शोभा देते हो, अच्छे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रेम भक्ति से भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, देखो दुर्वासा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा कहे क्यों, आप तो स्वतंत्र। बोले मैं सारे विश्व के लिए, सारे चराचर जीवों के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन भक्त पराधीन हूं, लेकिन मेरे जो भक्त है उसके मैं अधीन हूं। दुनिया के लिए स्वाधीन, लेकिन मेरे भक्तों के आगे मैं पराधीन हूं। अहम भक्त को न स्वतंत्र हे द्विज, द्विज मतलब दो बार द्विज ब्राह्मणों को कहते हैं ना, उपनयन संस्कार, एक तो जन्म होता है उपनयन संस्कार, द्विज संस्कारात द्विजो भवेत। तो हे द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे भक्तों के द्वारा परतंत्र हूं। भगवान का यह कहना, न स्वतंत्र ही द्विज हूं। साधु भी ग्रस्त हृदय, ये शुद्ध चरित्र वाले वैष्णव साधु मुझे अपने हृदय में बंदी बना लेते हैं, साधु भी ग्रस्त मुझे पकड़ के बांध के रख देते हैं, उनके हृदय में मैं बंदी बन जाऊं। साधु भी ग्रस्त हृदय, और उसके बाद भगवान कहते हैं मई निर्बद्ध हृदय, या आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं मुझे मई मुझे साधव साधु वैष्णव। साधव से क्या तात्पर्य है, साधु वैष्णव मतलब क्या, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं, साधव शास्त्रानुमोदित, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा। साधु मतलब केवल वेश से साधु नहीं, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है वो साधु। अब आप साधुओं के कई गुण बता सकते हो कि वो सरल होना चाहिए, हाँ कई गुण ले सकते हो, दयालु कृपालु होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ये बहुत बोला जा सकता है साधु के विषय में, लेकिन सारे गुणों को एक वाक्य में बोलना हो तो वो शास्त्र के अनुसार, उस शास्त्र में ये सब है, उनके अनुसार वो जीवन उसका। ये जो तितिक्षव कारुण का साधव साधु भूषणम कहा है ना, कपिल भगवान ने, उधर भी साधव शब्द आया है, उसकी व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि साधव शास्त्रानुमोद, शास्त्र के अनुसार जिसका चरित्र हो उसे साधु कहते हैं। साधु मतलब सरल भावुक वैष्णव। अभी देखो उसकी फिर जात नहीं देखी जाती, उसका रूप नहीं देखा जाता, उसका पद नहीं देखा जाता, हृदय देखा जाता है। भगवान भावग्राही है ना, उसको जन्म कहाँ लिया है, रूप को क्या है, पद कौन सा है, किसको कुल पद से उनको कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए चोखा मेला, चमार जाति के थे, पंडरपुर में विठल भगवान के पास जाकर बहुत भीड़ लगी। आप गए हो पंडरपुर एकादशी में, दो तीन दिन रुकना पड़ता है तब नंबर आता है, अगर भाग्यवान होंगे तो। तो ये भी चोखा मेला भी अंदर चले गए, कुछ केले लिए हुए थे, 6-7 केले थे उसके पास, और आके आगे जाके पुजारी को कहते हमारी ओर से केले लगा दीजिए भगवान को, तो पुजारी तो सब कुछ लेता रहता है ना, जो भी कोई फूल देता है उधर रख दिया, केला दिया इधर, उसको कहा मैं भगवान के चरणों में रखना, सही पुजारी का जो देता है वो, नहीं तो वो भी होता है। जो पुजारी का क्या है, जो है भगवान के चरणों में रखना। तो ऐसे ही ले लिया, जा रहा था तो फिर देखा पीछे, ए चोखा मेला, क्योंकि ऊपर पहचान गया कि ये तो चम, ये तो निम्न जाति है, अरे तुम इधर कैसे, ये लो तुम्हारे केले, चल भागो भागो भागो, भगा दिया वो चोखा मेला, ऐसे हाथ में केला वापस रख दिया उसको। वो ऐसे ही देख रहा है बेचारा भगत कि ये क्या कर रहे हैं, तुम निकलो यहां से दूर हो, क्योंकि निम्न जाति वो ब्राह्मण है ना, उसको थोड़ा थोड़ा था कि भाई निकलो यहां से। अब ये तो झगड़ा करने वाले भगत तो है नहीं, शांति से ले बोले ठीक है महाराज, लेकिन बड़े दुखी हृदय से घर वापस गए। क्यों? उसका अपमान किया, भगा दिया, ये दुख नहीं था सुखामेला को। उसको दुख यह था कि मैं इतना अभागा हूं कि मेरी वस्तु पंडरीनाथ विठल के चरणों में समर्पित नहीं, सेवा जोग न भाग हमारे। मेरा यह भी भाग्य नहीं कि मेरी सेवा समर्पित हो जाए कुछ। इस भाव से दुखी हृदय से घर केले लेकर पहुंचा, पीछे पीछे पंडरीनाथ भी पहुंचे। इधर पुजारी मंदिर बंद करता है और विठल भगवान चोखा मेला के घर पे, ए चोखा मेला लाओ लाओ तुम्हारा केला, तो ये पीछे देखते कौन है, अरे साक्षात द्वारिकाधीश की, लाओ तुम्हारा केला हमको खाना है। अरे महाराज उधर तो आपके दास ने हमको कितना क्या क्या सुना दिया और भेज दिया, और ऊपर से आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, ऐसा लगता ना कभी कभी हमको भी कि कहीं कुछ मजाक नहीं कर रहे हो महाराज। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे केले की वजह से मैं वहां कुछ खाया नहीं, एप्पल भी नहीं खाया उन लोगों का। वो लोग क्या क्या लाए थे, बड़ा रहा बेंगोल लाए, लेकिन वो तुम्हारा केला के लिए मैं वो नहीं खाया हूँ, ये लिए इसलिए आया हूँ। अब तो ये भगत राज कितने प्रसन्न हुए होंगे, उसको कोई वाणी से लिख नहीं सकता। वो तो केले का छिलका उतार कर दे रहे हैं, और इनको तो केले खाने की आदत द्वापर से है, वो विदुर जी के यहाँ चक्य है तब से खाते ही रहते हैं। वहां भी कुछ केला खाए, और वहां तो केला नहीं खाए थे, क्या खाए थे, वो छिलका, वो विदुरानी ने तो छिलका दिया था। विदुर जी आए तो उसने कहा अरे क्या कर रही हो तुम, वो तो भाव में थी ना, तो उसने देखा अरे तुम छिलका नीचे, वो जो केला नीचे डाल रही हो और छिलका खिला रहे, चलो। और विदुर जी ने ले लिया और छिलका उतार के केला दिया द्वारिकाधीश। भगवान केले खाते खाते विदुर को कहते हैं कि जो छिलके में आनंद है ना विदुर जी, वो केले में नहीं है महाराज, वो तुम्हारे केले में नहीं है। ठाकुर जी को तो वस्तु से मतलब नहीं है ना, भक्तिया माम अशिनाती, गीता में भक्तिया होना चाहिए। तो भगवान ने वहां कहा है, वास्तव में ये देखो भगवान का स्वभाव है। सुखदेव जी है ना जो भागवत के वक्ता, वो तो ब्रह्मलीन साधु ब्रह्मनिष्ठ थे, माया तो उसको छू नहीं सकती, समाधि में ही मस्त रहने वाले। लेकिन भगवान के स्वभाव को सुने ना, तो सब कुछ छोड़कर भागवत में बैठ गए, समाधि बमाधि को टाटा कर दिया। स्वभाव सुन लिया, क्या था स्वभाव, कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे मेरे ये कौन व्यक्ति है कि जो माँ जो विष देने जाती है उसको माँ बना लेते हैं, इससे दयालु कौन होगा। भगवान की सुंदरता के विषय में सुना, बरहा पीड़म नटवर वपु, इतना सुंदर एक लड़का है ब्रज में जिसके माथे पे मोरपिट है और पगड़ी टेढ़ी है, तो सबको सीधा कर देता है ये टेढ़ा टेढ़ी टांग वाला टेढ़ी चढ़न वाला है, क्या कमाल रूप है। सुखदेव जी तो समाधि बमाधि छूट गई उनकी, और जिसकी सुंदरता देखो इतनी अच्छी हो, अभी स्वभाव प्राय सब सुंदर होते हैं, उनका स्वभाव सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान तो ऐश्वर्यों के राजा है ना, स्वभाव भी उनका मधुराति मधुर, इतने दयालु, इसलिए तो इस स्वभाव को देखकर तो आ गए सुखदेव जी शरण में, पूरा भागवत ग्रहण कर लिया। यहां पर भी देखो भगवान के स्वभाव को स्पष्ट, उन्होंने कहा विदुर जी से घर जाते वो संधिदूत बनकर गए थे, संधिदूत बनकर गए थे, वो क्या था कि वो संधिदूत में वो मैसेज देना था कि युद्ध बंद करवाना है, आप लोग मेल कर लीजिए बांट लीजिए जो जो समझ लीजिए। कृष्ण को भेजा, कृष्ण जब जा रहे थे ना तो कुल माता आई थी भगवान के पास, कहां जा रहे हो, अरे बुआ संधि कराने जा रहा हूं। क्या सोचे, हमारे पुत्र वीर है और तुम संधि की बात करने जा रही हो, तब तक तो द्रौपदी भी खुले बाल। भगवान ने कहा बुआ तुम चिंता मत करो, संधि का मैसेज देने जा रहा हूं, संधि होने दूंगा वही, क्योंकि मैं धर्म से विनाश आय चल, अगर मैं नहीं करूंगा तो मिरर वाले करेंगे, विनाश आय तो ये तो करना है ऊपर से नहीं? अंदर से दूंगा नहीं तो चिंता मत कर। और वहां जाकर तो वो हुड कंपनी थी एक, वो क्या क्या टीम है तुम जानते हो सब लोग, दुशासन, एक मामा सारे भांजों का दीवाला निकाल दिया, बुद्धि उल्टी दे दिया, उसने भी बड़ा स्वागत उसका सत्कार तो किया, लेकिन भगवान भावग्राही है ना, उसने कहा मैं भूखा नहीं हूं और तुम्हारा मुझ में कोई प्रेम नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहां खाने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। तोरी प्रीति ना मोरी विपत्ति, यह बड़ी विपरीति, विपरीतता है, तुम्हारी मुझ में प्रीति नहीं और मैं विपत्ति में नहीं। विपत्ति में व्यक्ति भोजन कर लेता है, और भोजन भूख न हो, विपत्ति न हो, प्रेम देखता है तो कर लेता है। तुम्हारा प्रेम नहीं है और मैं भूखा नहीं हूं, इसलिए मेल नहीं हो रहा। अरे ये कहता है महाराज आपके लिए बड़ा आसन लगाया है, 56 प्रकार के 32 प्रकार व्यंजन बनाए गए हैं, और शकुनी कहते हैं हमारा भांजा रात पर जाके लड्डू बनाया है आपके लिए, उसकी बीवी को भी उसने सोने नहीं दिया, आप आने वाले थे इसलिए द्वारकाधीश, पधारिये पधारिये, हमारा महल बहुत बड़ा है। ऊंचे मंदिर किस काम के, कनक कलश जो चढ़ाए, सोने के कलश लगे हुए दुर्योधन तुम्हारे मंदिर मेरे कोई काम के नहीं। अपने भगत भवन जा बैठो, यद्यपि तृण भय छाए, घास की झोपड़ी होगी ना, लेकिन मेरे भगत के घर में जाकर मांग कर भी ना दे तो चुरा कर, मांग कर भी ना दे तो चुरा कर खा लेता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे के घर में आने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये भगवान का स्वभाव है, प्रेम के भूखे है वो, इसलिए गाया है सबसे ऊंची, ये प्रेम पुजारी है, प्रेम प्रेम है भगवान, प्रेम देखते हैं। चोखा मेला को कहा लाओ तुम्हारे केले, अब चोखा मेला तो दे रहा है 3-4 पूरा सेट डजन का था, उसमें ठाकुर जी आधा तो राधे राधे कर गए, फिर रुक जाओ हो गया बस, अभी चोखा मेला तो बस रूप का दर्शन कर रहा है, उसको कुछ गुण गाना है, लेकिन वाणी गद गद गिरा नयनम गलग, हम लोग बोलते रहते उनको हो गया। अब भगवान जा रहे हैं, तब तक कहते चोखा मेला अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहना, अरे प्रभु आज्ञा करो, बोले वो जो 6 बच्चे है ना रुक्मणी के, उसको वो बोलेगी अकेले के खा के आए तो दे दो ना, अरे ऐसे हमारे लक्ष्मी जी साक्षात हमारा, ले जाइए भगवान। और भगवान से ही शायद ये परंपरा चली है, घर ये लोग भी यही करते हैं, ले जाते हैं माता भगवान रुक्मणी तो वहां थी मंदिर में, उसने भी 2-3 खाया, 2-3 पड़ा, छिलका मंदिर में सुबह में मंगल आरती का शंख बजा, और पुजारी देखता है ये केले कहां से आए, भगवान की ओर देखता है, ऊपर देखता है कोई मंदिर नहीं तोड़ा ना, ये कहीं कुछ हो, अभी वो सोच रहा है कि ये बाहर जाके खा के आया कि कोई इधर दे गया, कुछ तो है, मैं जब रात को गया था सब साफ करके गया था, वो याद भी कर रहा है कि बराबर साफ किया था ना, हाँ बराबर मैं साफ किया था बिल्कुल, ये कहां से आया, भगवान की ओर देखता है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, अब क्या करें, और छिलके तो पड़े थे, लेकिन उसको याद आया कि हाँ एक भगत दिन में केला लेके आया था, मैं उसको नहीं घुसने दिया, भेज दिया था बाहर, उसको अंदर नहीं आने दिया था, लेकिन वही कुछ चाल चला होगा कहीं से, घर दी तो बहुत रहे थे ना पंडित, कैसे ही फेंक दिया होगा, कुछ तो किया है, या फिर मंदिर तोड़ के आया है, फिर ताला लगाया है, कि कुछ ना गड़बड़ वही किया होगा, और सबको इकट्ठा किया, पंडाओं को, पुजारियों को, सब मंदिर के मैनेजमेंट वालों को, बोले ये सब घट दिखाए, देखो केला पड़ा है, ये है सब, और सारी टीम गई चोखा मेला के घर पर, और वहां जाकर चोखा मेला को लगाया डंडा, हमारे मंदिर में घुस गया भगवान और केले बिखेर के चला गया। चोखा मेला कहता है कि महाराज रात को केले खाए, सुबह हमको डंडे खिलाए, तुम्हारी क्या लेला, क्या तुम्हारी, एक तो मैं ऐसे नहीं खाया था तो अच्छा होता था, अभी हमको खिला रहे हो, क्या बदला दे रहे हो भाई, लेकिन तुम जिसमें राजी उसमें हम, ये भगत होते हैं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, चलो खिलाओ कोई बात नहीं, डंडे खाने को तैयार है। और चोखा मेला को मारा जा रहा है, बोले तुम मंदिर ये कर दिया, तोड़ दिया, घुस गया, नियम तोड़ दिया, क्या क्या, वो बेचारा जानता ही नहीं कुछ, बोले मेरी हैसियत नहीं है ये करने की, लेकिन वो कहां सुनने वाले। लेकिन जैसे ही वो टीम मारकर आई, पंडरीनाथ है ना भाई, कहते हैं यहां पर कि मेरे भक्त मुझे हृदय में बंदी बना लेते, भगवान ने अपना दरवाजा कर दिया बंद, पंडरीनाथ ने पंडरपुर का किसी को दर्शन नहीं देना है, और सारे लोग खोल रहे, कोई अंदर से बंद के, क्या भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि तुम मेरे में से एक का भी मैं मुख नहीं देखना चाहता, मेरे शुद्ध भगत चोखा मेला का दर्शन करने से सारे तीर्थ के फल मिल जाते हैं, और तुम उसको मार कर आए हो, तुम्हारा मैं मुख नहीं देखूंगा, दर्शन बंद आज से। दर्शन ही नहीं दूंगा अभी बस। अरे सब स्तुति कर रहे हैं, रो रहे हैं, बोले हमको दर्शन मत दो, लेकिन मीरा रोड से कोई यात्रा में आएगा, बोले उनको भी नहीं, किसी को भी नहीं। बोले कोई गुजरात से आएगा, किसी को भी नहीं, दर्शन बंद। बस तुम्हारे एक के कारण सबका दर्शन बंद। अब सारे पंडरपुर रो रहा है, स्तुति कर रहा है, मना रहा है, अभी भगवान रूठे हुए हैं अपने भगत के लिए, क्योंकि भगवान को जितने दर्शन की भगत को इच्छा होती है ना, इच्छा होती है मैं भगवान दर्शन करूं, लेकिन उससे कोटि गुना भगवान को इच्छा होती है कि मेरे भगत के दर्शन करो। हमारे गिरधारी भी राह देखते कि संडे आता है 12:30, 1:15 तो पहुंचता ही है, 1:30 बजे तो अंतर प्रसाद के टाइम, तो 2 बजे तो आ ही जाएगा, क्यों नहीं आया, वो भी बेचारा सोचते हैं कभी कभी। वो भी जैसे आप लोग दर्शन के लिए आते हैं ना, वो भी दर्शन की राह में रहते हैं, उनको क्या, वो केवल भगत के दर्शन के लिए तो खड़े हैं। एक भगत ने पूछा प्रभु जी से, एक संत से वृंदावन में, कि भगवान को आप हमेशा खड़े क्यों रखते हो मंदिर में, जब मंदिर बंद हो तो भगवान को मूर्ति को ऐसे सुला देना चाहिए, फिर सुबह मंगला में सीधा कर देना चाहिए, खड़े ही खड़े रखते हो। बोले हमारे ठाकुर सोते नहीं है। क्यों? बोले हमेशा जागते रहते हैं, वो तो हम मन से सुलाते हैं, लेकिन भगवान सोते हैं तो क्यों उसको कोई रोग है, नींद नहीं आती, कोई क्या तकलीफ है। तो कहते हैं कि हमारे ठाकुर इसलिए जागते हैं और खड़े रहते हैं कि कहीं मेरा भक्त दुखी तो नहीं है ना, सोता रहूंगा खड़े होने टाइम, मेरे भगत को सुख देने के लिए। तो कहते कि भाई ठीक है, तुमने खड़े ही रखे हो तो सीधे खड़े रखो, टेढ़ा क्यों खड़ा रखा है इसको, खड़े ही रखे हो अपने ठाकुर को। तो बोले हमारे भगत सब टेढ़े दिल वाले, और उसको सीधा करने के लिए टेढ़े है, टेढ़े होके अंदर जाएंगे तो फिर पूरा फिट हो जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं, इसलिए हमको ठाकुर को टेढ़ा करके रखे है थोड़ा। और उसका थोड़ा स्वभाव भी प्रेम में है ना, टेढ़ापन होता है, समझते हो। ये भागवत में गोपियों ने, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इसको बताया है, प्रेम में गति जो है ना, वो स्वभाव कुटिला भवे, जो प्रेम करती है ना प्रियतमा, वो प्रेम में ताने देती है, क्रोध भी करती है ना। प्रेम की जो चाल है ना, प्रेम की भाषा है ना, उल्टी होती है। वृंदावन के संतों ने गाया है, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। ये प्रेम की बातें थोड़ी टेढ़ी होती है, वो समझ में नहीं आती सीधे, अंदर से भाव अच्छा होता है, बाहर से उलाना होता है, बाहर से क्रोध भी होता है, क्योंकि सांप सीधा नहीं चलता ना, ऐसे सांप जैसी बोला है रूप गोस्वामी ने प्रेम की गति को। स्वभाव कुटिला, कुटिला मतलब टेढ़ी, राधा रानी की ननद कुटिला, कुटिला मतलब टेढ़ा होता है। तो क्या है यहाँ पर, भगवान ने जब बहुत निवेदन किया ना, तब पंडरीनाथ ने आकाशवाणी से कहा कि देखो, जिस चोखा मेला को मार कर लाए आए हो ना, उसको पालकी पर चढ़ा के, चंदन लगा के, फूल माला पहना के, उनके जय जयकार करते हुए, दंडवत करते हुए, जब मैं रथ यात्रा में निकलता हूं, जब तुम करते हो ना, ऐसे करते हुए जब यहां लाओगे और वो आकर कहे कि प्रभु दर्शन दे दो, तो खुल जाएगा दर्शन। और ये सारे तो अब गए, और चोखा मेला बेचारा कुछ हल्दी ढूंढी रहा था, क्योंकि खिलाया है। अभी देखो इनकी लीला, पहले केला नहीं खाया, फिर केला खाया, फिर मार खिलाया, अब क्या खिलाने आ रहे हैं। अब पूरा सब चोखा मेला की जय हो विट्ठल के गुण गाते हुए सब भीड़ लग गई, और चोखा मेला तो समझ नहीं रहे क्या कर रहे, सब उसको चंदन लगा रहे, पूरा मालिश कर रहे, बिठा रहे, आइए पधार के मारा, वो तो समझ नहीं रहा क्या, बोले उधर जाके और कुछ बाकी रह गया मारना हमको थोड़ा। क्योंकि जो बकरा काटना होता है उसको बहुत सजाया जाता है, तो चोखा मेला तो यही समझा कि और भी कुछ बाकी रह गया होगा ट्रीटमेंट में। अरे नहीं, पूरी बात बताई कि विठल तुम्हारे दर्शन के लिए हम तरस रहे और हम लोग को नहीं मिल रहा, और वहां जाके पालकी में जय जयकार करते, ये लोग तो विठल जी ने बता दिया, मतलब चौका मेला की महिमा समझ में आ गई। आपने बता दिया कि तू केला वो देने, मैं उधर खाने गया तुम्हारे कारण, समझ नहीं रहा, पूरा बोला बता दिया बात, तब तो ये सब जय। और वहां कर जैसे कहा, हे पंडित, अब तो देखो चोखा मेला, आंखों से जैसे गंगा जमुना अविरत बह रही है, कि हमारे लिए इतना आप सोचते हो, इस नाचीज को भी आप, क्योंकि भगवान भूलते नहीं है, आप और हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन आपने भरी नाम लिया है, सेवा किया है, कुछ भी किया है ना, भगवान भूलते नहीं है। भगवान कहते सर ये याद कर रहा है चोखा मेला का, हमको इतना याद हमारे लिए, अब तो रोते हुए कहता है नाथ दर्शन दे दो। और द्वार धड़ाक से खुल गए पंडरीनाथ के, तो भगवान की जयकार होने लगी। और सबसे चोखा मेला नामदेव की सभा के एक बहुत अग्रगणीय संत माने जाने लग गए। भक्तों ज्यादा क्या कहे, चोखा मेला भक्त की बात मैंने छेड़ दी है, तो एक बात बता दूं, इतने विट्ठल नाम के प्रेमी थे कि जब वो उसका शरीर छूट गया ना, उसकी हड्डियों से विट्ठल विट्ठल निकल रहा था। बोलो हड्डियों से। हम लोग तो महाप्रसाद खा के भी नहीं निकल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। उनकी हड्डियों से विट्ठल 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 गूंज रहा था। ये है प्रेमी भक्त। और ऐसे भगत के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, तो ये यथा मैं भी उसके लिए मेरी लक्ष्मी को भी छोड़ सकता हूँ, वैकुंठ को भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के अगर मुझे चाहता है तो मैं सब कुछ छोड़ के भी उसे चाहूंगा। दुर्वासा तुम ऐसे भक्त का अपराध करके आए हो। कहने का तात्पर्य भगवान का मूल रूप से यही था कि मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए नहीं कर सकता कि जो भक्त मेरे हृदय में राज करते हैं, जिस भक्तों को मैं पूजता हूं, जिस भक्तों को मैं मेरी लक्ष्मी सहित सेवा करता हूं, और ऐसे भक्तों का अनादर किया हुआ व्यक्ति संसार में तीनों लोकों में कहीं सुरक्षा नहीं पा सकता। प्रयोजन ठाकुर जी का यह है कहने का। समदर्शना, सबके प्रति सम रहने वाले अम्बरीश जी ने दिखा दिया। दुर्वासा ने इतना किया, फिर भी दुर्वासा के प्रति अम्बरीश महाराज का कोई दुर्भाव नहीं। वो फिर भी उनको साधु मानते हुए प्रणाम स्वागत पूजा जैसे पहले किए ऐसे ही। उल्टा वो दुखी हो रहे थे कि मेरे कारण दुर्वासा को इतना तकलीफ हुआ, जबकि उनके कारण नहीं हुआ। हमारे गुजराती में कैसे, एना लखन ने लीधे ही तकलीफ देना पड़ी थी, एना धंधा ना ही काम आता। उसका ही प्रॉब्लम था। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसे साधु हृदय संत है कि क्या कह रहे हैं कि मेरे कारण आपको एक कष्ट झेलना पड़ा। ये है साधुता। जय श्री राधा गिरिधारी जो की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो भक्त कभी अपने आप को महान मानता नहीं है। ये भक्त की एक अपना दैन्य है, उसका एक सरल स्वभाव है। ये हमारे नरसिंह मेहता ने भी गाया है, पर मन अभिमान न आने रे। वो सब कुछ करता है परोपकार, लेकिन उसके मन में कोई अभिमान नहीं होता कि मैंने किया या मेरे कारण। तो यहां भगवान बता रहे हैं साधव, जो साधु है, समदर्शना, जो समदर्शी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितनी सुंदर बात याद कराते हैं कि पंडिता समदर्शी न। गीता में भी भगवान ने इस बात को छेड़ा है। और शुद्ध भक्त सबके प्रति समभाव रखते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी बात को रिपीट कर रहे हैं और उसमें उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं इस बात को, और स्वयं उसके आचरण में भी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के प्रति इतना वैर रखने वाले उनके पिता या उसके पिता के साथ देने वाले अन्य संबंधी राक्षस जो भी, लेकिन प्रहलाद ने स्वप्न में उनका भी बुरा नहीं चाहा। हम याद करें हमारे परंपरा के महान आचार्य जिसको महाप्रभु ने नामाचार्य की पदवी दी, ऐसे हरिदास ठाकुर, उसको ही दंड मारने वाले जो पीट रहे थे उनका भी भला कर दिया। उनके विषय में भी बुरा न चाह रहे हैं न सोच रहे हैं, जबकि महाप्रभु उसको मारना है उनको मना कर दिया। हम चैतन्य भागवत में महाप्रकाश लीला में ये पढ़ते हैं। अब कितनी कितनी सहनशीलता और कितनी साधुता। प्रहलाद महाराज के चरित्र में भी विष्णु पुराण से आप कथा सुने होंगे भक्तों के मुख से कई बार कि वही संत अमर ने वो कृत्या, जैसे दुर्वासा ने कृत्या प्रकट की थी, ऐसे उसने भी कृत्या प्रकट की। और उस कृत्या का तो कुछ ऐसा ही है कि वो अपनी शक्ति का प्रभाव न जमा पाए तो वही उल्टा होता है, उसको उत्पन्न करने वाले को। संत अमर शुक्राचार्य के पुत्र को ही मार दिया था, लेकिन क्योंकि जाको जिसको कृष्ण रख राजा की जिसको कृष्ण रखते उसको कोई राखे कृष्णा के मारे, किसमें शक्ति है कि उसको मार सकते। भगवान स्वयं रक्षा कर रहे थे उनकी, जबकि प्रहलाद की प्रार्थना भी नहीं थी। यहां पर अम्बरीश महाराज ने भी कोई प्रार्थना नहीं की थी, माम रक्षतु, रक्षा करो मेरी नहीं। भगवान कहते कि मैंने इसलिए सुदर्शन छोड़ रखा है ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए। बिना प्रार्थना के भी भगवान ने रक्षा प्रहलाद के चरित्र में या अम्बरीश चरित्र में, अम्बरीश महाराज के चरित्र में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हे भगवान विष्णु, एक बार भी मैंने सही रूप में आपको प्रसन्न किया हो, आज तक कुछ नहीं मांगा है, मांगता हूं कि मेरे गुरुओं को जीवन दान दे दीजिए। अब जिसने उसको मारा है उसके लिए अपनी भक्ति का दाव लगा रहे, जीवित कर कराया उसने, भगवान विष्णु को न चाहते भी करना पड़ा। एक रूप से तो यही समझ में आएगा। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की केवल प्रार्थना केवल वाणी नहीं है, चरित्र भी है, इसीलिए ये आचार्य है। आचार्य के विषय में क्या लिखा है वायु पुराणों में, आचनोति इति आचार्य, जो जो आचरण करके कर दिखाता है। आचार्य के विषय में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आचार्य एक शब्द है हमारे वैष्णव जगत का, लेकिन उसका परिभाषा क्या है, तो कहते हैं सरल संस्कृत समझ में आई ऐसी बात है कि धर्म शास्त्र तो उक्तम, आचार्य जो होता है वो धर्म शास्त्र से ही बोलता है, वो अपनी वाणी से न धर्म, वो जो भी बोलेगा भागवत से बोलेगा, गीत सत्शास्त्र जो है सनातन उसकी वाणी में वही होता है। तो धर्म शास्त्रस्तु उक्तम स्वयं आचरित सदा, और वो जो बोलता है शास्त्र से वो स्वयं आचरण करता है, और अन्य तो शिक्षयेत स आचार्य निगद्यते, और वही दूसरों को सिखाता भी है। स्वयं धर्म शास्त्र को समझता है, पढ़ता है, बोलता है, उसका आचरण करता है, और यही समाज को साचार्य निगद्य। आचार्य की कई परिभाषा अलग अलग शास्त्रों में संतों ने दी है, लेकिन ये सरल एकदम समझ में आने वाली बात। तो हम देखते हैं हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्यों में या जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं उनके चरित्र में कि केवल वाणी में नहीं है, उनके आचरण में है, और यही पूर्णता है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा था कि आचार प्रचार यही दो ही कार्य, जगत तेरा गुरु जगत तेरा आर्य, तुम्हारा दोनों है। इसी ये हमको हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक एक रूप से प्रसंग है। हम भागवत में सत्संग में क्या समझना है, शुद्ध भक्तों के चरित्र से हमें इस सारे सद्गुणों को ही तो अर्जन करना है, और एक वैष्णव जब वैष्णव सद्गुणों से विभूषित होता है ना तो भगवान को भी आकर्षित कर लेता है। भगवान को प्रसन्न करना यही साधना का सार है ना, संसिद्धि हरितोषणम। और भगवान किससे प्रसन्न होते, शुद्ध वैष्णव से, साधुओं से, जो सरल स्वभाव के हो, जो निष्कपट भाव से सहन करके कीर्तनीय सदाहरि लगे हो उसमें न, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। ये देखा जाता है गोपियों के चरित्र से, सारे भक्तों के चरित्र से। तो हम याद करें प्रहलाद महाराज को या हरिदास ठाकुर को, ऐसे ही यहाँ पर अम्बरीश महाराज के चरित्र में वास्तविक साधु थे। ऐसे भले राजा वेश राजा का था लेकिन साधुता साधुता। और हमारे यहाँ से दूसरी बात कि भगवान का स्वभाव हमें पता चलता है कि कोई कुछ भी हो, ऋषि हो, राजा हो, ऊंचे कुल में हो, ज्ञानी हो, धनी हो, भगवान से उनसे ज्यादा मतलब नहीं, उनको मतलब है शुद्ध सरल चित्त वैष्णव से। फिर वो भले निम्न कुल का हो, भले वो कुरूप हो, उसे मतलब नहीं है। हम एक कथा पढ़ते हैं शास्त्रों में, दक्षिण भारत के इतिहास में, राजा गंगदेव चोलन। वैसे तो साउथ के तो सारे राजा धार्मिक है, विष्णु भक्त रहे हैं प्राय, और राजाओं को याद करें साउथ इंडिया के तो कुलशेखर आरवार को भूलना नहीं चाहिए, भगवान के महान भक्त, जिसने हमें एक सलाह दी है अपने मुकुंद माला, श्लोक फूलों की माला पहनाते, इसने श्लोकों की माला भगवान को मुकुंद को पहना दी, स्तोत्र ही माला का चढ़ा दिया है, एक भाव ये भी है। और वही कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, सलाह देते हैं हमें कि छोड़िए, क्योंकि ये शरीर अनित्य है, पतंती अवश्य, क्योंकि इसमें संधि है 100-100 सांत, कभी भी गिरेगा, गिरा है, गिरता रहेगा, गिर रहा है। हम लोग वहम में है कि हम लोग जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जितना सत्य है उतना ही सत्य है, हम मर भी रहे हैं, है ना, हम मर रहे हैं, मृत्यु आएगा कि हम मर ही रहे, ये भी सत्य है, क्योंकि जीवन जा रहा है। इसीलिए निरामयम कृष्ण, क्या ढूंढ रहे हो औषधि संसार में? कृष्ण रसायन पियो। कृष्ण रसायन से क्या तात्पर्य है? यही कृष्ण पवित्र भक्त के चरित्र, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, क्योंकि कृष्ण रस विग्रह है और उनकी लीला, उनका नाम उनसे अभिन्न है, तो वो साक्षात रस है। और पिवह, इसी को व्यास जी ने मंगलाचरण में ही दे दिया है, रसिका भुवि सुख मुखाद अमृत द्रव, पिवह, पियो इसको। और इसको समझने वाले सारे महाजन यही करते हैं। केवल पृथ्वी के मूर्ख मनुष्य जो रजस तमस गुणों के शिकार बन चुके हैं, वे ही लोग विषयों की ओर उन्मुख है। और आज उसकी कलियुग के प्रभाव में संख्या ज्यादा है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन संस्था के भक्तों के संपर्क से, इस कृष्ण रसामृत का कुछ कुछ सिंधु में से जैसे बिंदु कुछ कुछ तो आस्वादन करते हैं, संडे टू संडे कम से कम, ये भी कम नहीं है। लेकिन संतुष्ट इससे हमें, क्योंकि लिखा गया है नित्यम भागवत, ये समझना है हमें। केवल हम प्रारंभ में बोल लेते तो मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। हमें विचार भी, क्योंकि विचारण परो, नाना शास्त्र विचारण एक निपुणो, विचारना, विचार करना, क्या बोला जा रहा है, हम क्या परो, क्या कर रहे हैं, इससे भक्ति बढ़ता है। तो हम मूल बता रहे थे बात आपको, दक्षिण भारत के वे राजा गंगदेव चौलन, उसके राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त ब्राह्मण भी महान भक्त था भगवान का, राजा भी भक्त थे, दोनों भगवान को भक्त प्रिय होते हैं। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात हुई उसमें संवाद, क्या कि वे राजा हर रोज मंदिर में, विष्णु मंदिर में दर्शन करने आते थे, और वो राजा थे तो राजा के हिसाब से अपनी भेंट भी लाते थे, बड़े बड़े वस्त्र लाते थे, गहना लाते थे, श्रृंगार लाते, और पुजारियों के माध्यम से, और स्वयं भी सेवा में नियुक्त थे, तो भगवान को बड़े बड़े गहनों से, अलंकारों से सजाते थे। अब ये ब्राह्मण देवता जो है विष्णुदत्त जी, वे भी मंदिर आते थे दर्शन करने आते, और वो तुलसी की माला, गरीब थे बेचारे, वही लाते थे। अब क्या हुआ कि वो सारा श्रृंगार पहना देंगे राजा, तब ये आके तुलसी की माला डालें, तो राजा को थोड़ा पसंद नहीं आता था। उसने कहा कि देखो ब्राह्मण जी, हम इतना बढ़िया बढ़िया श्रृंगार ला रहे हैं और तुम है कि ये तुलसी की माला ला रहे। तुलसी मैं जानता था, वो भी कुछ तो जानते थे, लेकिन श्रृंगार के लिए सर थोड़ा समझो आप। वो ब्राह्मण क्या कहे, उसने कहा आप सही कह रहे हो महाराज, लेकिन हमने शास्त्रों से सुना है तुलसी कृष्ण प्रेयासी, ठाकुर जी को तुलसी प्रिय है, तुलसी के नाते तो बिकने को भी तैयार हो जाते हैं, बिक्रीडते स्वात्मानम तुलसी दल मात्रेण, तो कुछ बुरा नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन हमारे श्रृंगार का अब ये इसका करे भगवान क्या करे। अब दोनों में इस तरह वाद के साथ विवाद हो गया, वाद को अगर रोका ना जाए तो उसमें भी कुछ भी आ जाता है, विवाद हो गया। अब क्या हो गया, बोले कहा अभी ये करना, ये दोनों है, ब्राह्मण का भी अधिकार है, राजा भी अधिकार, दोनों अपने अपने कर से थे, भगवान क्या करे। और उस समय उसने बातों में चढ़ गया कि नहीं तुलसी भगवान को प्रिय, हम चढ़ाएंगे। वो बोले नहीं रहने देना, आप तुलसी चढ़ा सकते हो, लेकिन हमारा श्रृंगार को बिगाड़ो मत, उसको भी, हमारा भी जो सोना चांदी गहना उसका महत्व। अब दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हैं। और तब राजा ने अहंकार बस कह दिया कि मैं आपको बता दूंगा ब्राह्मणता कि हमारे श्रृंगार का क्या महत्व है और हमारा क्या भाव। उसने कहा ठीक है महाराज। और मृदगल ऋषि के वंशज कुछ इसमें आने वाले कुछ साधुओं के संपर्क में उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। राजा थे, यज्ञ करने के लायक थे, उसके पास सब समृद्धि थी, और ये ब्राह्मण देवता गरीब थे, उनके पास तो कुछ नहीं था। ऐसी कथा कुछ हम शास्त्रों में, हमारे भागवत में भी, द्वारिकाधीश जब जाते हैं मिथिला, और वहाँ के राजा बहुलाश और उसी मिथिलापुरी के एक ब्राह्मण, क्या नाम है उसका, श्रुतदेव, यस प्रभु, श्रुतदेव ब्राह्मण, वो भी भक्त भगवान के इंतजार में प्रेमी। और अब एक प्रश्न होता है, हम जब वो कथा पढ़ रहे थे भागवत में, कि श्रुतदेव ब्राह्मण भी द्वारकाधीश का प्रेमी भक्त था, बहुलाश्व राजा भी द्वारकाधीश के प्रेमी भक्त थे, और उनके सेवा पूजा में पूर्णतः नियुक्त थे। तो एक प्रश्न होता है कि तो द्वारका दर्शन के लिए क्यों नहीं जाते थे? तो उसने ही मंदिर उस अपने घर में ही राजमहल में ही मंदिर बनाया था, इसने भी अपने घर में मंदिर बनाया था, और उस अर्च विग्रह को साक्षात भगवान ही मानकर उनकी पूजा में बाधा न हो इसलिए एक दिन भी कहीं नहीं जाते थे, उसी सेवा में लगते थे। ऐसा उत्तर हाँ परम पूज्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में दिया कि ये इसीलिए नहीं जाते थे कि द्वारका दी प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात, और उनकी सेवा पूजा में और उनके नाम कीर्तन विरह में उतना आनंद और भाव प्रकट होता था कि उनको विरह में जब कीर्तन कथा मिलता है तो वो आनंद अति आनंद माना जाता है, विरह का आनंद भी श्रेष्ठ माना गया हमारे गौड़ीय धारा में भी। तो उसमें भी हम सुनते हैं कि द्वारकाधीश जब गए और फिर वहां तो दोनों रूप लेकर दोनों के घर गए वहां पर भी, और राजा ने अपने जैसा स्वागत किया, और श्रुतदेव ब्राह्मण जो थे उसके घर में उसके पत्नी परिवार, लेकिन उसके घर में तो इतना नहीं था, और द्वारकाधीश अकेले नहीं गए थे, कई संत मंडलियों के नाम लिखे गए हैं, नारद जी थे, सुखदेव जी भी थे, बोलो उसमें सब संतों के साथ गए थे भगवान। तो इतने संत मंडली के साथ ठाकुर जी पधारे, राजमहल में तो कोई चिंता नहीं थी, तो क्या फिर यहां पर भी? हाँ यहां पर भी संतों की डबल मंडली, भगवान योगेश्वरेश्वर है भाई, उनका अद्भुत ऐश्वर्य उन्होंने प्रकट किया, ऐसे द्वारिका की लीला प्राय ऐश्वर्य लीला है, प्रभुपाद जी ने अपने इस श्री कृष्ण बुक में भी लिखा है जो समरी जो सार है दशम स्कंद का कि भगवान ने अपना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया कि अन्य संत जो संत मंडली के साथ उस बहुलाश्वर राजा के पास गए थे वैसे ही यहां पर भी सुखदेव के घर भी गए एक साथ, समर्थ ईश्वर है। तब क्या हुआ? यहां तो वो सुविधा नहीं थी जो राज महल में होनी है क्योंकि ये तो गरीब गांव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहां तक लिखा है कि कुछ चटाई सामग्री बाजू वाले के घर से लाना पड़ा इनको, हम जैसे हमारे होता है घरों में जब ज्यादा नहीं तो कुर्सी बाजू वाले के पास ढूंढने जाना पड़ता है, ऐसी दशा थी क्योंकि गरीब थे तो क्या करें, लेकिन दिल के बड़े अमीर थे। देखो धनी कौन है? हमारे प्रेमा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द है चैतन्य चरितामृत में, जिसके पास भक्ति कृष्ण प्रेम भक्ति का धन है वह धनी है, वो नहीं है तो एक नंबर का गरीब है। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम भक्ति का धन नहीं है तो उसका जीवन दरिद्र है और बेकार है। अतएव दास मुझे दास करके मुझे वेतन के रूप में प्रेम दीजिए, ये शिक्षाश्रम का भाव अनुवाद करते हुए महाप्रभु ने गंभीरा में इस वाक्य को बोला है। दास करी में वतन देह प्रेम धन, प्रेम धन वास्तविक धन है और भागवत में भी आया है महात्म्य में भी कि जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति का धन है तो वास्तव में धनी है। क्या सुदामा गरीब था? सुदामा जैसा कोई धनी नहीं था क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि में श्याम श्री हरेर भक्ति एका, सकल भुवन मध्य निर्धनापि ते धन्या यस्य हृदये श्री हरेर भक्ति निवेशिता, जिसके हृदय में भगवान हरि की भक्ति है वो सबसे बड़ा धनी है। क्योंकि वास्तविक धन साचो मीरा मेरो प्रेम धन वही गाया है, राम प्रेम धन ही ससली धन। तो ये श्रुतदेव भले बाहर से कुछ नहीं था लेकिन वो सबसे बड़े त्रिभुवन के सौभाग्यशाली व्यक्ति आज है क्योंकि उनके घर सारे देवता जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं वे द्वारिकाधीश, जिसके चरणों से गंगा निकली है, जिनके चरण कमलों को महादेव समाधि में ध्यानस्थ करते हैं, बड़े बड़े योगिंद्र मनिंद्र जिनके चरण कमलों के ध्यान को भी नहीं ग्रहण कर पाते युगो युगों तक, वे साक्षात चरण आज उनके घर पर आए हैं। क्या श्रुतदेव गरीब है? आप बुद्धि से विचार करिए, नहीं, सबसे धनी आज वो है। लेकिन एक एक समाज एक सरल शिक्षा ये है इसमें, ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई हम वैष्णवों के लिए कि भले वस्तु ना हो लेकिन हृदय तो होना चाहिए ना। हमारे ऐसे भारतीय संस्कृति भी है कि अतिथि हाँ उनको क्या, ये तो साक्षात देवों के देव आए हैं, जय जय देव लेकिन अतिथि को भी देव कहने का है, और स्वागत इसी तरह होता है। और एक श्लोक में बड़ा सुंदर लिखा गया नीतियों में कि कुछ ना हो, जल तो होता ही है ना व्यक्ति पास, भले एक्वागार्ड का ना हो, जल से चटाई तो होती है, चलो चटाई भी नहीं है, जल भी नहीं है, वचने का दरिद्रता। कुछ मीठे वचन तो हो सकते ना क्या प्रभु जी पधार, भले कुछ नहीं है लेकिन आज लोग बोलने में भी भिखारी हो गए, गरीब हो गए, ये एक कलयुग है बड़ा, वचन वचन बोलने में भी गरीब हो गए। लेकिन देखिए यहां श्रुतदेव विश्वनाथ चक्र ठाकुर ब्लान कर लाके स्वागत करना है उनको, और भगवान कृष्ण की स्तुति वहां पर भी की राजा ने, यहां पर भी की, बड़ा सुंदर स्तुति है। और श्रुतदेव के घर भगवान उसी आनंद उसी में कोई कम, क्योंकि भगवान भावग्राही है। लेकिन इस प्रसंग की समाप्ति करते वक्त सुखदेव जी ने एक बड़ा लास्ट श्लोक दिया, सिद्धांत दिया, भगवान के स्वभाव का निरूपण किया। इस तो बताई कि भगवान के घर भी गए, ये स्वागत हुआ, यहाँ ये स्वागत हुआ, ये स्तुति हुआ, ये हुआ, बड़ा लंबा चरित्र है, प्रज्ञ से भक्तों को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन सुखदेव जी ने सार अंतिम बात श्लोक में बताया कि हे राजन, परीक्षित को सुना रहे इस चरित्र को, कहते हैं कि भक्त भक्तों के वत्सल भगवान अपने भक्त के भी भक्त बन जाते हैं। सारी दुनिया कहती है कि भगवान भक्त वत्सल है, प्रख्यात है विष्णु भक्त वत्सल के नाम पे पूरे विश्व में, लेकिन केवल भक्त वत्सल मतलब भगवान भक्तों का रक्षण करे, पालन करे, पोषण करे, इतना ही नहीं, अपने भगत के भगत बन जाना, अर्थात सेवा करने भी लग जाते। अरे भगत की सेवा की बात छोड़ दीजिए, महाभारत प्रमाण रहा इतिहास आज मानव समाज में कि भगवान ने अपने भगत के घोड़ों की भी सेवा की। द्वारिका जी तो अर्जुन तो चले जाते थे, और घोड़ों की सफाई करना, ये सब बांधना जोतरे कौन करते थे, ड्राइवर का ही, वो तो गाड़ी साफ करना तो उनका ही काम है ना। अभी आप एक बात मजे की ये सुनिए कि ये ड्राइवर लोग गाड़ी साफ करते आपने देखे होंगे, पगार लेके करते, फ्री में तो करते नहीं, लेकिन पोते से करते हैं, अपने शर्ट से नहीं। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर से साफ किया है उसको, ये भाव है उसको, ये नहीं, वो देख मेरे अर्जुन का है, किसका है, मेरे अर्जुन का है बस। भक्त चैतन्य महाप्रभु का भाव यही है, तुम्हार की कथा सार्वभौम, तुम्हार गामेर कुकुर, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। तुम्हारे जैसे भक्त की बात तो बहुत दूर हो जाती, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी, भक्त के गांव का, तो भक्त के परिवार या स्वयं भक्त के विषय में तो अभी ये तो कई मुझे न्याय हो गया, क्या कहना अभी उसके विषय में। तुम भक्त के भगत सेवा करने में इतना कुछ संकोच नहीं है उसको, ये नहीं कि सारा मीडिया देख रहा है, कल कथाएं होने लगेगी, ये लोगों ने डाइविंग किया, भगवान ने कहा खींचो खींचो फोटो हमारा, प्रभुपाद जी ने गीता में दे दिया उसको फ्रंट पर कि देखो ये डाइविंग करते हैं। लेकिन यही उनकी भक्तता है, यही उनका ऐश्वर्य हो गया भगवान का, क्योंकि तो भगवान यही दिखाना चाहते हैं, भक्त्या माम भी जाना, मैं भक्तों के वशीभूत हूं, यही मेरी भगवत्ता है। देखो पूरा प्रभाव, अर्जुन को विश्वरूप उसी जगह दिखा दिया, शिव ब्रह्मा उनसे प्रकट हो रहे, सारी सेना अग्नि मुखारविंद में जा रही है, काल के काल है, बोल रहे उसी बोझ में मैं काल हूं, ब्रह्मा जी स्तुति हुए बोल दिए कि यस्य गया ब्रह्मति समृद्ध काल चक्र, इतना जिसका प्रभाव है, योगेश्वर है। लेकिन उनका सुंदर स्वभाव देखिए कि अपने भगत के दास बनने को भी, हमारे नरसिंह मेहता का काम करने के लिए रुक्मणी को लेकर आते थे ठाकुर जी गुजरात में, यहां भी देखिए नामदेव का झोपड़ी करने के लिए आ जाते, भगत के दास बन जाते हैं, ये उनका स्वभाव है। भक्तों जब हम भगवान के स्वभाव को ये वास्तविक दर्शन है, इससे हमारा भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट होता है, सेवा भाव जो हमारा स्वरूप है ना, यही सत्संग का सार है, प्रकट होता है। क्योंकि हम भगवान के विषय में सुनते नहीं, उनके स्वभाव को जानते नहीं, उनके ऐश्वर्य प्रभाव को जानते नहीं, इसीलिए कचरे में लगे हुए। लेकिन रसो वर्जन परम दृष्टा निवर्त, असली बात जानेंगे परम रस को तो निकृष्ट विषय भोग में मति रहेगा नहीं। लेकिन नहीं करने दुर्दशा है जीव की, भगवान स्वयं यहां पर कहते वशे कुर्वंती, हे दुर्वासा ऐसे साधु वैष्णव भक्त मुझे वश में कर लेते। वहां पर भी यही हुआ, वो विष्णुदत्त ब्राह्मण राजा तो भले यज्ञ में लग गए लेकिन उनके पास तो कुछ था नहीं, केवल तुलसी दल था और बस भगवान का कीर्तन गुण गाते थे। हुआ यूं उनके राज्य वो जो आप जिस झोपड़ी में रहकर कीर्तन भजन कर रहे थे वो विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण दक्षिण भारत के, तो एक चांडाल उसके यहाँ आया। वो रोज भोग लगाकर खाते थे, थाली लेकर भाग जाता, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी। इनको पता, ये तो समाधि, ये तो मन में भाव में भी तो पता नहीं कोई खा जाता है। एक दिन उन्होंने आँख खोला देख लिया कि वो लेकर भाग गया कोई चांडा, एकदम गरीब भिखारी जैसा व्यक्ति, ये इनके पीछे पड़े। लेकिन खींचने के लिए, मारने के लिए नहीं। लिखा गया है जैसे हमारे नामदेव जी के विषय में, कुत्ता रोटी लेकर भागा तो वो घी की कटोरी लेकर भागे, ओ महाराज घी लगाए बिना ले जाओ ले जाओ। ये भगत होते हैं, छीनने के लिए नहीं, बोले अरे ऐसे क्या, इसमें भी और कुछ और भी बना है और डालना है। लेकिन जैसे पीछे भागे वही जाके वो उसके शरीर और देखा तो साक्षात कोई और नहीं था वो, और इसी को वही स्वरूप प्रदान करके ले गए। विष्णु दत्त को विष्णु स्वरूप प्रकट करके वैकुंठ की ओर ले जा रहे हैं और राजा देख रहा है कि ले ये तो महाराज तो जा रहे हैं। बड़ा पश्चाताप उनको थोड़ा हुआ लेकिन भगवान ने उस पर भी कृपा की। लेकिन प्रसंग से जो सारांश शिक्षा है कि भगवान अपने भक्तों के रूप धन से, मतलब उसको बाहरी वस्तुओं से नहीं है, उनको भक्ति से या भाव से है। और हमें क्या डेवलप करना है, ये कर्म के द्वारा ये सब मिल ही जाएगा। भागवत में प्रहलाद जी ने भी कहा है, नारद जी ने भी कहा है, बिना बुलाए सुख दुख आ जाता है। आप कभी मंदिर में आकर प्रार्थना की है, प्रभु जी हे गिरधारी जी मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस कम हो जाए, कैंसर हो जाए, सर्दी, कोई किया प्रार्थना? फिर भी पूरे हो रहा है कर्म के नाथ, दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, कर्म के द्वारा हो ही जाता। ऐसे ही प्रहलाद जी कहते हैं कि आ जाएगा, तत्प्रयास न कर्तव्य मत आयु व्यय परम न तथा विंदते से मुकुंद चरणाम्बुजम। असुर भक्त बालकों को शिक्षा देते हुए इसीलिए इसमें आयु मत बिगाड़िए, भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय लिए बिना क्षेमम न भवंति कल्याण होगा ही नहीं, ये करने लायक है। ये समझिए, असुर बालक तो समझ गए, आज के मनुष्य नहीं समझ रहे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रहलाद की बात को हमें विचार करना चाहिए, वो महाजन है, अपना अनुभव साक्षात्कार हमारा भला करने के लिए कह रहे हैं, नहीं मानने पर तो हम ही अपनी दुर्गति को निमंत्रण देने दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर भगवान के इस स्वभाव को शास्त्रों से संतों से समझने मिलता है और वो स्वयं कहते हैं कि भक्त्या भक्ति के द्वारा माम मुझे वशी कुर्वंती मुझे वश में कर लेते हैं। उदाहरण दे रहे कि कैसे वश में कर लेते हैं, सत स्त्रीय सती नारी, जो एक बात ऐसे हिंदी में भी समझ जाएंगे लेकिन मैं गुजराती में बोलूंगा कि तीन प्रकारनी स्त्री होय, एक सती एक हस्ती और एक भस्ती। और ती एक हम हस्ती होती है, एक सत्य और एक अभी किसको क्या मिला हमको पता नहीं लेकिन होता है ऐसा। लेकिन हमें शिक्षा मैसेज यह है तुकाराम जी के चरित्र से और हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता के चरित्र से, क्योंकि हम है गुजरात से और भजन कर रहे हैं महाराष्ट्र में, दोनों को याद करेंगे प्रभु जी ओके तो दोनों के हमने ऐसा सुना है और नामदेव महाराज को भी, लेकिन ये कि तुकाराम जी की पत्नी थोड़ी कर्कशा थी ऐसा हा? और हमारे सुदामा हमारे नरसिंह मेहता की पत्नी के विषय में हमने सुना है बड़े शांत स्वभाव और पूर्ण साथ देती थी हा? और नामदेव जी के विषय में तो उसमें भी अनुकूल भारिया है हु? तो शिक्षा क्या देते हैं संत लोग, सब भगवान की कृपा है। अगर कर्कशा है तो अच्छा है, उसमें आसक्ति होगा ही नहीं, महामंत्र में मति लगेगा, अच्छा ही है। और अनुकूल है तो और अच्छा है, मंदिर में साथ में आएगी, कीर्तन में कथा में सेवा तो भी अनुकूल, अगर अनुकूल है तो भी कृपा है, प्रतिकूल है तो विशेष कृपा है
क्योंकि हमारा प्रयोजन विषयों से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग है, वो होना चाहिए। तो तुकाराम जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, उसने सब भगवान, क्योंकि उसे भजन में और अच्छा है। और हमारे नरसिंह मेहता ने भी कभी कोई क्योंकि भक्त के जीवन में कंप्लेन होता ही नहीं। हमारे गुरु जी ने कहा, कहे एक, एक प्रवचन में कि भागवत के कथा के अंतर्गत कि हर प्रतिकूलता जब अनुकूल लगने लगे तो समझो कुछ भक्ति में प्रवेश हुआ है। भक्ति में प्रवेश हुआ है तब माना जाएगा कि प्रत्येक प्रतिकूलता ईश्वर का अनुग्रह लगता है। और ये भागवत की बात है। तग भाग वपु भी विदधन नमस् मुक्ति पदे सदाय भाग, उसको सब सब अनुकूल लगता है भक्त को। ये भक्तों का, ये उच्च भक्तों का, शुद्ध भक्तों के चरित्र में ये शिक्षा मैसेज हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम उदाहरण की बात कर रहे हैं कि सत स्त्री या सती नारी अपने सरल सेवा भाव से पति को वश में कर लेती है। हम उदाहरण देखते हैं देवहूति माता का, करदम जी योगी राज थे, समाधिस्थ रहने वाले साधु, लेकिन जो सेवा देवहूति जी ने की है, बाप रे, वो भी रिझ गए। क्या विमान बनाया और क्या, आप देखिए पढ़िए, सब सुख देना चाहा उसको, वश में कर लिया, क्योंकि पूर्ण अनुकूल। इसलिए मैत्रेय जी ने भागवत में इस प्रसंग को कहते हुए क्या उदाहरण दिया, भवानी एवं भवन प्रभु। देवहूति माता एक एक मनु महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट की कन्या और विवाह हुआ एक फक्कड़ झोपड़ी में रहने वाले जिसके पास एक लंगोटी मात्र है ऐसे साधु से, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई कोई शौक नहीं उसको। करदम जी को न मॉल में जाने का शौक है न सिनेमा और कुछ नहीं। अब हुआ क्या, लेकिन देवहूति माता ऐसे ऐसी सेवा करने लगी जैसे मैत्रेय जी कहते हैं भवानी एवं भवा यथा, जैसे भव मतलब शिव, भवानी मतलब पत्नी उनकी। हिमालय की पुत्री थी, हिमालय भी पर्वत राज और उसमें भी सोना, उसके पास भी कमी नहीं है ऐश्वर्य की। लेकिन शंकर भोले बाबा भी ऐसे ही है, कैलाश में वट वृक्ष के नीचे कथा कीर्तन लग गए तो लग गए, समाधि में लग गए तो लग गए, कब खोलेंगे पता नहीं। लेकिन कभी पार्वती ने कंप्लेन नहीं किया, चलो शॉपिंग, चलो इधर नहीं, बस सेवा उनको अनुकूल, जीत लेते हैं ना ऐसे। इसीलिए तो शंकर भगवान ने उसको भी कथा अमृत दिया है, उस रस को सती जीत लेती है, कैसे बैरागी होते हुए भी अनुकूल कर लेती है। और हम कितने सभी नारियों का, सीता जी का उदाहरण आप ले सकते हो, भगवान राम की जो सती और जो सेवा की है, जनक महाराज की कन्या होते हुए, राजकुमारी होते हुए, फूलों की शैया पर जो चलती है, कभी कभी नीचे पांव नहीं रखा, रघुकुल की पुत्रवधु, लेकिन पति के साथ जंगल में जाने में उसको दिक्कत खुशी से जाती है। वो कहती है कि जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे हम आपसे अलग नहीं हो सकते, हमारा सारा सुख आपके चरणों में है, हम आपके साथ आएगी। बड़ी विनम्र भाव से, सरल भाव से राम को ले जाना पड़ा, सीता मैया को। लेकिन एक बात रामायण में हमको बड़ी आकर्षित करती है कि चित्रकूट में जब भरत जी गए और तब वहां मिलन हुआ, जनक राज भी पहुंचे थे, और उस समय सीता माता ने जो दिखाया, जनक जी ने देखा उधर, क्योंकि वो जब भेजा था तब देखा और आज देख रहे हैं, बहुत अंतर है दशा में। लेकिन सीता हंसते मुख से वो कहते कि मैं परम सुखी हूं पिताजी, ऐसा नहीं कि सारा कंप्लेन करने लग गया आज की तरह कि भैया भाई ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, हूं तो मरी गए, सारा लीधे बीजा मरी गया, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे, कोई कंप्लेन नहीं, उल्टा हंसते मुख से जनक जी की आंखों में आंसू ला दिया कि धन्य पुत्र तो कईयों को हुए होंगे, लेकिन हे सीता तुमने पुत्री होकर पिता होकर प्रणाम करने को मन चाहता है तुम्हारे चरणों में, कि दोनों कुल को तुमने उजागर कर दिया। ये नारियां है भारत की, वश में कर लेती है पतियों। भगवान उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि सती नारी अपने पति को प्रेम से सेवा से जीत लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे अपनी सेवा और प्रेम से वश में कर लेते, दुर्वासा मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। यह है भगवान का स्वभाव। भक्तों भगवान से ना कोई ज्यादा दयालु, क्योंकि न समस्या न अधिकम कुतन, उसके समान कोई नहीं, अधिक होने की क्या बात है करें, उपनिषद कहता है। इसीलिए आप हमारे जीवन को सार्थक करना है तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ाइए। क्योंकि भगवान नाम और भगवत कथा, भगवत भक्तों के संग में भगवत प्रसाद के अंतर्गत आस्वादन करते हुए शुद्ध वैष्णव बनने से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति धाम को पाता है, हमारा ये लक्ष्य है। इसीलिए एके रे कुरु नंदना, भगवान ने गीता में जैसे कहा, बहुशाखा अपनी बुद्धियों को समेटिए और गिरधारी के चरणों में, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध संतों के चरणों में मन बुद्धि को निवेशित करिए। ऐसे साधु संत और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमें हमारा जीवन बनाना है। सारे शिक्षाओं का सार है कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण से प्रेम करने का प्रैक्टिकल तात्पर्य है उनके नाम का कीर्तन करना, क्योंकि प्रेम होता है वो गाए बिना रह नहीं सकता, उनकी सेवा किए बिना रह नहीं पाएगा। तो हरि नाम जप जो युग धर्म है, एक साधना ही नहीं वो साध्य भी है, क्योंकि नाम और नामी अभेद है। प्रेम को प्राप्त किए हुए लोग भी यही करते हैं, शुद्ध अपने स्वरूप को प्राप्त किए हुए विष्णु लोक के पार्षद चाहे गोलोक वृंदावन के प्रेमी पार्षद उस अवस्था को प्राप्त करके भी यही कर रहे हैं। और महाप्रभु ने करुणा करके जो अनंत अवतारों में अलग युगों से नहीं दिया था वही प्रेम धन गोलोक का वृंदावन का ये हरि नाम हमें दिया है। और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजी, तो क्या जानिया सुनिया विष खाइनु, तो विष पीना बंद करिए विषयों का और कृष्ण नामामृत का अमृत आस्वादन करिए। कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान नाम जपने वालों के वश में आ जाते हैं। तो बस भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरि नाम का आश्रय लीजिए। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नामाश्रय करी अतने तुमी ठाकुर अपना गृह दाको बने दाको सदा हरि। बस हमें ये करना है, हमारा बिजनेस नहीं छोड़ना है, महामंत्र। बस इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप भक्तों को कि आप इतने गर्मी में भी धैर्य से सुन रहे थे। हाँ, कृष्ण प्रेम का ये प्रतीक आपने दिखाया, इससे कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे मैं कोई ज्यादा प्रिपेयर नहीं था, भगवान की कथा जो प्रसंग लिया, अपनी बुद्धि से कुछ गलती हो तो आप वैष्णव लोग क्षमा करिएगा, सुधार लीजिएगा और बस हंस की तरह सार सार ग्रहण करिए और कृष्ण भक्ति का हमें आशीर्वाद दीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय।